इशिका और अभिमन्यु इस वक्त होटल रूम के अंदर थे। तरुण और माया के दिए ड्रग्स की वजह से वे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। अर्ली मॉर्निंग इशिका की नींद टूटी तो उसने अभिमन्यु को जगाया और सारा सच बता दिया। इशिका चाहती थी कि वो ईशानी की जगह लेकर तरुण की फैमिली के साथ जाकर रहे। अभिमन्यु इस बात से इनकार कर रहा था, पर इशिका के समझाने पर वो मान गया। जहां पहले अभिमन्यु दिल्ली जाने से कतराता था, वहीं इशिका के चलते उसने दिल्ली जाने का फैसला किया। इशिका और अभिमन्यु बात ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। किसी के आने की आवाज़ सुनकर अभिमन्यु और इशिका दोनों ही हड़बड़ा गए। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर दबी आवाज़ में कहा, इतनी सुबह कौन हो सकता है? कहीं माया और तरुण तो नहीं जाग गए? पता नहीं, ऐसा करो तुम बाथरूम में चली जाओ, मैं कपड़े पहनकर चेक करता हूँ बाहर कौन आया है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और उठकर जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। अभिमन्यु का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, उसके चेहरे पर वही ना दिखने वाली हल्की सी मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले इशिका ने कहा, मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकती हूँ, पर ये वक्त और जगह दोनों ही सही नहीं है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे इशिका को छोड़ दिया। इशिका जल्दी से बाथरूम गई। उसके जाते ही अभिमन्यु ने कपड़े पहने। बाहर मौजूद आदमी लगातार धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी के आने से डर रहा हो, इसलिए उसने जोर से दरवाज़ा नहीं खटखटाया। दरवाज़ा खोलने से पहले अभिमन्यु के चेहरे पर हमेशा वाला वही कॉन्फिडेंस था। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने पृथ्वी खड़ा था। अभिमन्यु ने राहत की सांस ली और उसे अंदर आने का इशारा किया। वापस दरवाज़ा बंद करते हुए अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ देखकर हैरानी से कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? जानते हैं ना मेरे पास आपकी हर मोमेंट की लाइव लोकेशन रहती है। आप बिना किसी सिक्योरिटी के एक अनजान आदमी के साथ इस होटल में कैसे आ सकते हैं? ऊपर से मैं क्रूज पर गया था तो मुझे पता चला कि मैम भी वहां पर नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? पृथ्वी ने एक सांस में कहा। वो अभिमन्यु का प्राइवेट मैनेजर और हेड सिक्योरिटी गार्ड था। उसके लिए अभिमन्यु की सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं था। तभी अभिमन्यु के अकेले कहीं जाने पर वो घबरा गया था। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, सबसे पहले तो तुम रिलैक्स करो, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर यहाँ पर आए हो, इशिका यहीं पर है। इशिका के वहां होने का सुनकर पृथ्वी को रिलैक्स फील हुआ, वरना इशिका के गायब हो जाने के बाद से वो काफी घबरा गया था। उसे ये भी डर लग रहा था कि वो अभिमन्यु को क्या जवाब देगा। पृथ्वी ने जवाब में कहा, आप दोनों यहाँ इस होटल रूम में क्या कर रहे हैं? मैं अचानक पृथ्वी बोलते हुए रुक गया, क्योंकि उसकी नजर फर्श पर पड़े इशिका के कपड़ों पर गई। पृथ्वी ने अपनी नजरें झुकाई और कुछ पल रुक कर कहा, ये जगह आप दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है, मैं बाहर हूँ, 5 मिनट के अंदर आप दोनों भी यहाँ से मेरे साथ किसी सेफ जगह पर चल रहे हैं। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और उसे बाहर जाने का इशारा किया। वैसे भी अगर इशिका को ईशानी की जगह लेनी थी तो उसका माया और तरुण के जागने से पहले वहां से निकलना जरूरी था। अभिमन्यु ने कमरे का दरवाजा बंद किया और इशिका के कपड़े उठाए। वो बाथरूम के पास आकर बोला, जल्दी से कपड़े पहनो, हमें यहाँ से निकलना होगा। इशिका बाहर आई। अगले 5 मिनट में अभिमन्यु और इशिका पृथ्वी के साथ गाड़ी में थे। इस वक्त वे तीनों साथ में गोवा से दूर उस टाउन में जा रहे थे जहाँ पर ईशानी और उसकी फैमिली रुके हुए थे। वे वहाँ पर घूमने के लिए आए थे। वो घर तरुण के किसी दोस्त का था। लगभग 2 घंटे में वे लोग वहाँ पहुँच चुके थे। अभिमन्यु ने गाड़ी में पार्टीशन लगा रखा था। पूरे रास्ते इशिका और अभिमन्यु बिल्कुल शांत थे। जैसे ही वे वहाँ पर पहुँचे, अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर इशिका से कहा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नहीं जानते कि ये लोग कैसे हैं और ईशानी को किन हालातों में रखते होंगे। मैं तुम्हें पूरी दुनिया से सेफ रख सकता हूँ। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, जानती हूँ कि तुम मुझे सेफ रख सकते हो। शायद यही सोचकर ईशानी ने हम दोनों की शादी करवाई थी, लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें किससे खतरा है तो हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? किसी पर यकीन नहीं कर सकते अभिमन्यु। ठीक है, तो फिर मुझसे ज्यादा दूर मत रहना। ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझसे मिलने के लिए आती रहना, क्योंकि इसमें हम दोनों का ही खतरा है, लेकिन मुझ तक अपनी अपडेट पहुंचाती रहना। मेरे कुछ आदमी एनी टाइम तुम्हारे पीछे रहेंगे ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। अब प्लीज इसके लिए मना मत करना, अभिमन्यु ने जवाब दिया, जिस पर इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया। बहुत मुश्किल से इशिका और अभिमन्यु की जिंदगी में कुछ ठीक होने को आया था, लेकिन हालातों ने एक बार फिर उन्हें दूर कर दिया था। कल रात उनके बीच की सारी दुनिया खत्म हुई थी और अगली सुबह उन्हें इस तरह अलग होना पड़ा था। ये सोचकर अभिमन्यु को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। इशिका अभिमन्यु के इमोशन समझ सकती थी। वो अभिमन्यु के क्लोज आई और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। न जाने वे दोनों वापस फिर कब मिलने वाले थे। इशिका ने एक हल्के किस के बाद मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर राजवंश, अब तक का सफर काफी अच्छा था। आज भी याद है वो पहला दिन जब तुम्हें ये तक यकीन नहीं था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और आज का दिन देखो, तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे खुद से दूर भेज रहे हो। बिल्कुल मिसेज राजवंश, काफी कुछ बदल गया है। जो लड़की मुझसे इरिटेट होकर मिलती थी, दिन रात तलाक और मेरी पत्नी होने की रट लगा कर रखती थी, आज वो इस वादे के साथ मुझसे दूर जा रही है कि वापस जरूर आएगी।
अभिमन्यु ने हल्का मुस्कुराकर कहा। वहीं आगे की सीट पर पृथ्वी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। इशिका अभी तक बाहर नहीं निकली थी और वो इसका मतलब अच्छे से समझ सकता था। उसने आइस रोल करके कहा, अच्छा खासा मैम को क्रूज पर रखा था। लेकिन नहीं, सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जब तक वो सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, इन्हें सुकून नहीं आने वाला है। अभिमन्यु ने रास्ते में पृथ्वी को पूरी सिचुएशन के बारे में बता दिया था। आखिर पृथ्वी उसका एकमात्र भरोसेमंद आदमी था। इशिका की सिक्योरिटी भी वही देखने वाला था। पिछली सीट पर बैठे अभिमन्यु और इशिका अभी भी बातें कर रहे थे। अभिमन्यु का मन नहीं कर रहा था कि वो इशिका को अपने से दूर जाने दे। इशिका उससे थोड़ा दूर हुई और बोली, तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना मुझसे अलग होने का? मुझे जाना होगा अभिमन्यु, इससे पहले कि वे लोग यहाँ पर पहुंच जाए। मुझे ईशानी की जगह लेनी होगी। आखिर उन्हें इस बात का यकीन भी तो दिलाना है कि ईशानी वापस लौटाई है। अभिमन्यु ने बड़े भारी मन से हाँ में सिर हिलाया और फिर इशिका को वहां से छोड़कर चला गया। इशिका के पास उस घर की डुप्लीकेट की थी जो उसने पहले ही उठा ली थी। अंदर जाते ही इशिका ने ईशानी का सामान खोला। उसने ईशानी की तरह कपड़े पहन लिए। ईशानी ज्यादातर स्किनी पैंट्स के ऊपर लॉन्ग अनारकली कुर्ती पहनती थी। इशिका ने ईशानी के कपड़ों में से उसके कपड़े निकालकर पहन लिए। ईशानी के बाल इशिका से थोड़े लंबे थे। इशिका ने उसके हिसाब से पहले ही दिशांक से हेयर एक्सटेंशन वगैरह मंगवा लिए थे। लगभग एक घंटे में इशिका तैयार थी। उसने खुद को आईने में देखा तो वो बिल्कुल ईशानी की तरह लग रही थी। इशिका ने गहरी सांस ली और इशिका के टोन में बोलते हुए बिल्कुल नर्म लहजे में कहा, चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको जल्दी ढूंढ लूंगी। इशिका सिंघानिया को भले ईशानी मर्चेंट क्यों ना बनना पड़े, लेकिन वो सच तक पहुंच कर रहेगी। इशिका वहां बैठकर उन लोगों के आने का इंतजार करने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ तरुण और माया नींद से जागे। वे दोनों उठते ही जल्दी से इशिका के कमरे के आगे आए तो कमरे का दरवाजा खुला था। क्या वो लड़की जाग चुकी है? माया ने आंखें बड़ी करके हैरानी से कहा।
उसे लड़की छोड़ो, मिस्टर राजवंश का सोचो, वो हमारे हाथ से नहीं निकलने चाहिए, तरुण ने घबरा कर कहा। वहां किसी को न देखकर उन दोनों की दिल की धड़कन तेज हो गई। माया ने तरुण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, अगर वे दोनों यहां से भाग भी गए हैं तो हमारे पास हमारा ट्रंप कार्ड है। अभी भी वो कैमरा वहीं पर लगा हुआ है। अभिमन्यु राजवंश को हमसे कांटेक्ट करना ही होगा। माया काफी कॉन्फिडेंट थी। कैमरे का याद आते ही तरुण ने भी राहत की सांस ली। वे दोनों कमरे के अंदर गए तो कमरा बिल्कुल साफ था। फिर उनकी नज़र सामने रखे वास पर गई। उसमें कैमरा वैसे का वैसा लगा हुआ देखकर तरुण के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। थैंक गॉड, प्लान काम कर गया। मैं इसे मोबाइल से अटैच करके देखता हूँ कि फुटेज सही से आई है या नहीं, तरुण बोला और कैमरे के फुटेज देखने लगा। तभी उसका मुंह उतर गया क्योंकि वहां अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तरुण का उतरा हुआ चेहरा देखकर माया ने उसके कंधे पर मारते हुए बोली, एक काम बोला था वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। ना जाने वो लड़की भी कहाँ गायब हो गई। मुझे तो शक है कि वही लड़की मिसेज राजवंश है और दुनिया के सामने मरने का दिखावा कर रही है। अगर ऐसा है ना तो ये समझ लो कि हमें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है, तरुण ने खुश होकर जवाब दिया। फिर अचानक ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमने उसे खो भी दिया। सही कहा तुमने, और ना जाने तुम्हारी वो नालायक बीवी भी कहाँ गायब हो गई, माया ने मुंह बनाकर कहा। उसका गायब होना तो अच्छा ही है, वैसे भी डिवोर्स देने के लिए मान नहीं रही थी। अच्छा है ना वो रास्ते से हट गई, तो मैं और रश्मि शादी कर सकते हैं, तरुण बोला, जिस पर माया ने एक बार फिर से उसके कंधे पर मारकर कहा, क्या करूं मैं तुम्हारा, तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। वो लड़की अगर चली गई तो उसकी कंपनी भी हमारे हाथ से चली जाएगी। याद है ना विल में क्या लिखा हुआ है, उसकी कंपनी भले ही बड़ी ना हो लेकिन हमारा खर्चा उसी से चल रहा है। उसके मरने या गायब होने की सिचुएशन में कंपनी ट्रस्ट को दे दी जाएगी, यहाँ तक कि रूही को भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तभी मुझे वो बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, तरुण ने गुस्से में सिर हिलाकर कहा। वे दोनों वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनका चेकआउट करने का टाइम हो गया था। होटल स्टाफ आकर उन्हें इस बारे में बताया तो माया और तरुण को रूही के साथ ही वहां से जाना पड़ा। हालांकि उसे इस बात का बहुत मलाल हो रहा था कि उन्होंने इशिका को खो दिया था। उनके होटल से निकलते ही एक आदमी ने पृथ्वी को कॉल करके कहा, वो लोग यहां से निकल गए हैं। ठीक है, उन पर नजर बनाए रखो, पृथ्वी ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। इशिका उनके आने का इंतजार कर रही थी। तो वहीं इशिका को वहां पर छोड़ने के बाद अभिमन्यु राजवंश विला पहुंचा। इशिका की शोक सभा खत्म हो चुकी थी तो राजवंश हाउस के लोग उस पर एक नया बम फोड़ने के लिए तैयार थे। हमेशा की तरह उनका एक ही मकसद था, अभिमन्यु को उसकी पोजीशन से हटाना। यहां से एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। आई होप कि ये कहानी आपको बोर नहीं कर रही। कहानी के साथ बने रहिए। अगले पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर लाइक और कॉमेंट कर दीजिएगा।